Hare Krishna. Hari hai dayal mara, jai Radha na.
Bhuvan Ratna.
Hare Rama, Hare Rama.
की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। गौर प्रेमानंद समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। उन्नीसवें श्लोक में कहते हैं
इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया विष्णु छत्राकम् इव बालकः इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया विष्णुः छत्राकम् इव बालकः इत्युक्तैकेन हस्तेन
साक्षात विष्णु या श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा दिया, जिस तरह की कोई बालक कुकुरमुत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है। कुकुरमुत्ता आप जानते हैं, मशरूम जानते हैं, छतरी के समान होता है जो उगता है घास में। तो अपनी बात को दोहराइए। यह कहकर साक्षात विष्णु या श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया,
जिस तरह की
कोई बालक कुकुरमुत्ते को
उखाड़कर
हाथ में ले लेता है। गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कैसे उठाया? जैसे एक छोटा बच्चा, जो छोटा मशरूम होता है या छोटा फूल होता है, वो आसानी से उखाड़ देता है जमीन से, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, जो कि केवल 7 वर्ष के थे, उन्होंने बहुत ही आसानी से उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कोई कठिनाई नहीं हुई भगवान श्री कृष्ण को। छत्राकम इव बालकः, बच्चे का खेल था भगवान के लिए। कभी कभी जब कोई व्यक्ति को कहा जाता है, क्या तुम ये कर पाओगे, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, मतलब बहुत आसानी से मैं कर सकता हूं, तो यहाँ पर भी भगवान ने क्या किया, इति उक्त्र एकेन, इति उक्त्वा, ऐसे क्या है करें, ऐसे सोच कर कि मुझे अभी मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी, एकेन हस्तेन, केवल एक हाथ से, कृत्वा गोवर्धन आचलम दधार, दधार मतलब धारण किया, कृत्वा मतलब किया, गोवर्धन आचलम, गोवर्धन अचल, अचल मतलब पर्वत, तो केवल एक हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। लीलया, भगवान की लीला थी, लीलया शब्द का तात्पर्य यह भी है कि बड़े आसानी से, लीलया विष्णु छत्राकम इव बालक, तो बड़े आसानी से अपने लीला की भगवान श्री कृष्ण ने। ये अक्सर ही उदाहरण हम सुनते हैं कि यहां कोई वजन उठाता है तो कितना मुश्किल होता है उसे उठाने के लिए। अभी चीन देश में ओलंपिक खेल चल रहे हैं, आशा करते हैं कि आप कोई टीवी में नहीं देख रहे होंगे, कोई देख रहे हैं आप, हाथ ऊपर कीजिए, देख रहे हैं भगवान की लीलाओं को देखना चाहिए, ये हृदय के टीवी में, इस टीवी में ये खेल देखने से क्या लाभ। खैर, जब आपने देखा है तो आपने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता देखी होगी, वजन उठाने की प्रतियोगिता, वो दिखने में कैसे होते हैं लोग, हमारे जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, बिल्कुल तगड़े होते हैं और हट्टे खट्टे होते हैं, उनके शरीर वज्र के समान होता है और पहलवान जैसे दिखते हैं और सारे आयु भर, उनके जीवन भर वो तैयारी कर रहे होते हैं, विशेष प्रकार का आहार, विशेष कसरत क्या नहीं करते हैं, किस लिए, वजन उठाने के लिए। वैसे भी के जीवन में भार कम है इतना बोझ है दिमाग के ऊपर, फिर भी ये लोग और बोझ बढ़ाना चाहते हैं। उद्वहते विमूढ़ान, भाव उद्वहतो विमूढ़ान, प्रहलाद श्रीमद भागवत में कहते हैं कि इंद्र सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए लोग बिना वजह के जिम्मेदारियों को, अपने जीवन में बोझ को उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने जीवन को और भी विकट बनाए जाते हैं। तो यहां ये लोग वजन उठाते हैं, कितने किलो उठाते होंगे, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलोग्राम, ज्यादा से ज्यादा 300 किलोग्राम उठाते समय क्या हालत होती है उनकी, क्या आप देखते हैं कि उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और बड़े आराम से एक न हस्ते न दधार लीलया, ऐसा होता है कि एक हाथ से उठा रहे हैं और हंस के ऐसे खड़े होकर हंस रहे हैं, कभी होता है, नहीं होता है। भगवान ने आज, भगवान को आज तक किसी ने स्वर्ण पुरस्कार नहीं दिया, जिसके बेचारे थक थक के उसकी तो बुरी दशा हो जाती है, किसी ने किसी तरह 200-300 किलोग्राम उठा लेता है, उसको स्वर्ण पुरस्कार मिलता है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसके लिए किसी ने उनको पुरस्कार नहीं दिया। तो यहां गोवर्धन का वजन क्या हुआ होगा, कितने लाखों टन हुए होंगे, लेकिन भगवान ने लीलया दधार, कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया, बड़े आसानी से भगवान ने उठा दिया। और हरिवंश में, हरिवंश भी एक शास्त्र है जो पुराण कहलाता है, महाभारत के साथ में पढ़ा जाता है, इसमें कहा है सधृतः संगतो मेघे गिरिः सव्येन पाणिना, कि भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उठाया जो कि संगतो मेघे गिरी, उस गिरी को, उस पर्वत को उठाया जो कि मेघों का संग कर रहा था, अर्थात वो पर्वत इतना ऊंचा था कि उसके उसके जो शिखर हैं वो बादलों को स्पर्श कर रही थी। सद्धृतः, तो ऐसे गिरी, ऐसे पर्वत को धारण किया, किस हाथ से किया, सव्येन पाणिना, सव्येन मतलब बाएं हाथ से, पाणिना मतलब हाथ, सव्येन मतलब माएं, तो सव्ये न पाणिना धृति गिरी, तो इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उठा लिया। जब लोगों को पूछा जाता है कोई काम के बारे में, जैसे हमने पहले कहा कि लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों का खेल है, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं अरे मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। साधारण से हम लोग दाहिने हाथ से सब कुछ करते हैं, तो बाएं हाथ से करना मतलब कि ये ऐसी चीज है जो हालांकि मैं बाएं हाथ से तब ठीक ठाक नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये काम इतना आसान है कि हालांकि मेरा बाएं हाथ ठीक नहीं है फिर भी मैं आसानी से इसको कर दूंगा। मैं इतना अच्छा खिलाड़ी हूं कि बाएं हाथ से भी खेलूंगा तो उसको हरा दूंगा। मतलब बाएं हाथ से कुछ काम करना मतलब बहुत ही आसान है हमारे लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया बताइए? उनके लिए कुछ भी नहीं था, ये दिखाने के लिए कि मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। और गोवर्धन पर्वत न केवल ऐसे उखाड़ा उन्होंने जमीन से जैसे बच्चा एक फूल को उखाड़ता है, परंतु उन्होंने बाएं हाथ से उखाड़ा और बाएं हाथ से उखाड़ कर ऊपर धारण किया। और जब ये वेट लिफ्टर जो खिलाड़ी होते हैं जो वजन धारण करते हैं एक हाथ से तो नहीं करते हैं ना, और दोनों हाथ से करते हैं, और दोनों हाथ से करते हैं तो पूरे हाथ का फायदा उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या ऐसे हाथ से ऊपर धारण किया? कैसे गोवर्धन पर्वत को धारण किया? बाएं हाथ से, लेकिन उस बाएं हाथ के छोटे से उंगली से, सबसे छोटी उंगली जो है उससे। कभी कभी ये जो है हम लोग ये तो मेरे छोटी उंगली का काम है, तो भगवान ने सब करके दिखाया। बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, छोटी उंगली का खेल है, इसलिए करके दिखाया कि भगवान के लिए तो खेल है, लीला है। तो क्या भगवान के लिए कार्य बहुत अद्भुत है? एक दृष्टि से है, दूसरे दृष्टि से नहीं है। तो भगवान का गोवर्धन धारण करना ही अद्भुत क्यों है? क्योंकि मनुष्य समाज में या कोई भी मनुष्य ऐसे पर्वत को धारण नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण भगवान है फिर भी वो मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, इसलिए, और फिर भी वो 7 वर्ष के एक बालक हैं। ऐसे बालक या पौगंड अवस्था में उन्होंने इतना भयंकर कार्य किया, विशाल कार्य किया जो कि संभव ही नहीं है, इसलिए अद्भुत है। ये भगवान की मधुर लीला है। अपने मधुर लीलाओं में भी वो कभी कभी ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, इससे भगवान के लीलाओं के माधुर्य की वृद्धि होती है, घटन नहीं होता है। देखिए वृंदावन के निवासियों में और अन्य जो भक्त हैं भगवान के, उनमें ये अंतर है कि दोनों जगह भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भी भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे, दिखने में भी एक मनुष्य की तरह थे, बात करते थे मनुष्य की तरह, सब कुछ एक मनुष्य की तरह कर रहे थे। लेकिन जब उनके प्रिय मित्र अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा तो अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन बिल्कुल हिल गए। अर्जुन कहने लगे कि मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने हे माधव हे सखा इति ऐसे नामों से आपको पुकारा, आपको मैंने केवल मेरा मित्र समझा। हम लोग साथ में उठे बैठे, हम साथ साथ सोते थे, साथ साथ खाते पीते थे, हम इधर उधर सैर करने जाते थे, कभी कभी मैंने हाथ आपके कंधों पे हाथ रखा, हम एक दूसरे की मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप तो परम सत्य भगवान हैं, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कीजिए। तो जब अर्जुन और कृष्ण का संबंध जो कि बहुत एक प्रेम का संबंध था, दो मित्रों के बीच में, दो निकट के मित्रों के बीच में जैसे प्रेम का संबंध होता है वैसा ही संबंध था। परंतु हालांकि यह संबंध मधुर था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को दिखाया, विराट रूप को दिखाया, तो उस मधुरता में, उस मिठास में घटन हो गया। तुरंत अर्जुन की भक्ति हिल गई। ऐसा नहीं कि वो प्रेम नहीं, प्रेम करना बंद कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं, लेकिन जिस भाव से वो प्रेम कर रहे थे श्री कृष्ण को, उसमें विकार आ गया। अब वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखने लगे। पहले तो अपने मित्र के रूप में देखते थे, इसलिए प्रेम या भाव का अंतर पड़ गया। परंतु वृंदावन में ऐसे नहीं। वृंदावन में भक्तों के प्रेम का माधुर्य इतना तीव्र होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुछ अद्भुत ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते भी हैं, तो उस मिठास में, उस प्रेम के माधुर्य में घटन कभी नहीं होता, बल्कि वृद्धि होती है, बढ़ जाता है वो माधुर्य प्रेम भक्तों का भगवान कृष्ण के प्रति। ये है विशेषता वृंदावन की। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे एक बालक के रूप में आके वो ऐसे एक विशेष और अद्भुत कार्य कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है मनुष्यों के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये लीला बहुत विचित्र है, अद्भुत है, क्योंकि एक बालक कर रहे हैं और वो भी आसानी से, एक हाथ से, छोटे उंगली पर। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए, अगर हम श्री कृष्ण को भगवान मानकर चलते हैं, तो फिर इसमें भगवान के लिए क्या अद्भुत बात है। भगवान के कला मतलब उनके अंश के अंश के अंश संकर्षण या शेषनाग, उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है अपने पैरों पर, और हर एक ब्रह्मांड उनको एक तिल के बीज के समान प्रतीत होता है। तिल का बीज का क्या वजन होता है हमारे लिए? कुछ भी नहीं। तो संकर्षण या शेषनाग को, जिन्होंने कि सारे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, सारे ब्रह्मांडों का वजन एक तिल के बीज के समान लगता है। तो क्या ऐसे भगवान, जिनके कला, जिनके अंश के अंश इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आसानी से धारण कर सकते हैं, जो सारे ब्रह्मांड के भीतर, जो जिन्होंने सारे लोगों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को धारण किया है, उनके लिए एक पर्वत उठाना कौन सी बड़ी बात है? इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो अद्भुत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मनुष्य लीला कर रहे हैं श्री कृष्ण, क्योंकि ये बहुत मधुर है, इसलिए एक दृष्टि से वो बहुत ही अद्भुत कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने सेतु समुद्र के पार कर दिया, ये भारत से लंका, तो भगवान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं पत्थरों को तैराना, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अद्भुत है, हमारी सीमा के बाहर है, इसलिए हम अद्भुत कहते हैं, क्योंकि रामचंद्र भगवान मनुष्य लीला कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमें जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण यह लीला करते हैं हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए, हमें उनके प्रति आकर्षित करने के लिए। वृंदावन में ऐसे लीलाओं से भक्तों का प्रेम और भी गाढ़ा हो जाता है, उनका स्नेह और बढ़ जाता है, कृष्ण के बिना वो रह नहीं सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर से दौड़ते हुए गोवर्धन तक गए, तो ऐसे बताया गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की योग माया शक्ति ने, संहार की शक्ति ने ऐसे उनको ढक दिया ताकि उनके वस्त्र, उनका दिव्य शरीर बिल्कुल गीला नहीं हुआ। और जैसे जैसे श्री कृष्ण दौड़ते हुए जा रहे थे गोवर्धन की ओर, तो वो अंतर जो था दोनों के बीच में भगवान की योग माया से बहुत करीब हो गया, ताकि भगवान को समझ ही लगा जाने के लिए। तो तुरंत ही भगवान वहां पर पहुंच गए। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन की यात्रा कर रहे थे, जैसे ही पहले उन्होंने गोवर्धन का दर्शन किया तो उन्होंने एक प्रार्थना कही,
वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड सपातुनः क्रीडा कंदुकतंगेन नीतो गोवर्धनो गिरिः।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वामः, वामः मतलब बायां, किनका किनका बायां हाथ? तामरथ अक्षस्य, तामरथ मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें, अक्षस्य मतलब जिनके कमल पत्र जैसे आंखें हैं, उनका बायां भुज दंड, उनका बायां भुजा, उनकी बाएं भुज जो हाथ जो है, सपात वह, वो तुम्हें सुरक्षित रखे। आशीर्वाद दे रहे हैं महाप्रभु इस श्लोक के द्वारा। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है, तो इस श्लोक का उच्चारण महाप्रभु ने किया कि श्री कृष्ण जो बायां हाथ है, श्री कृष्ण जिनके आंखें कमल में जैसे हैं, कमल जैसे हैं, उनका बायां हाथ आपकी रक्षा करे। बायां हाथ क्यों रक्षा करे? क्योंकि भगवान ने नहीं तो गोवर्धन गिरी ही, उन्होंने धारण किया था गोवर्धन धार, गोवर्धन गिरी को, गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार से धारण किया था? क्रीड़ा कंदुकतम येन, कंदुकतम मतलब खिलौना, क्रीड़ा मतलब खेल में। तो उन्होंने उस बाएं हाथ से इस विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया और धारण किया, जैसे कि उन्होंने खेल में एक खिलौना, एक बच्चा खेल में खिलौना उठा लेता है। तो उनकी इस भगवान की लीला तो खेल था। भगवान के हर एक कार्य को लीला कहते हैं, जो भगवान बड़े आसानी से करते हैं, केवल अपने अंतःकरण के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए और अपने भक्तों के हृदय में जो दिव्य आनंद है उसे बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन धारण किया और उसके बाद उनका नाम हुआ गिरिधारी, गोवर्धनधारी। तो ऐसे अनेक नाम उनके पड़ गए। भगवान को वैसे देखा जाए तो कोई नाम नहीं है, परंतु उनके भक्त उनको नाम देते हैं, उनको गुणों के आधार पर, उनकी लीलाओं के आधार पर। जैसे जैसे भगवान को लीला करते हैं तो उनका कोई नाम पड़ जाता है, उनके भक्त उनको उस नाम से बुलाते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो उनका नाम हो गया गिरिधारी या गोवर्धनधारी। इस प्रकार से भगवान ने ये सुंदर लीला को प्रदर्शित करके लाखों करोड़ों वर्षों तक भक्तों के लिए श्रवण कीर्तन का एक सुंदर विषय दिया है। और भगवान ने उन लोगों के मुंह को भी चुप कर दिया जो कि भगवान की नकल करना चाहते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो अपने अनैतिक कार्यों को करने के लिए भगवान का उदाहरण सामने देते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं हम भी रासलीला करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहना कहते थे, उनसे पहले पूछिए कि आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? अगर आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो आप फिर रासलीला कीजिए, नहीं उठा सकते तो फिर नहीं कीजिए, ये बड़ा पाप होगा आपके लिए। एक दो साल पहले यहां कर्नाटक में ही कोई विषय था, तो भक्त बता रहे थे कि राजनीति के क्षेत्र में एक नेता ने, एक दल ने दूसरे दल को कुछ धोखा दिया, कुछ हुआ, आपस में जो होते रहता है राजनीति में। और जब ये बात आई कि आपने झूठ क्यों बोला, किसी पत्रकार ने पूछा होगा, तो उस नेता ने उत्तर दिया, अरे भगवान श्री कृष्ण भी झूठ बोले थे तो हम क्यों नहीं झूठ बोलेंगे। और फिर अनेक ऐसे उदाहरण देने लगे तो अगले दिन अखबार में एक चुटकुला आया था जिसमें ऐसे दिखाया गया कि एक नेता है और टोपी वगैरह पहन के गए हैं एक ज्योतिष के पास और ज्योतिष को पूछ रहे हैं या एक पंडित को पूछ रहे हैं, पंडित जी बताइए कि शास्त्र में और कितने सारे उदाहरण हैं झूठ बोलने के। मतलब हम बोलेंगे तो हम शास्त्र का प्रमाण दे सकते हैं ना कि देखो ऐसे ऐसे झूठ बोला गया, इन्होंने इस समय ऐसे कार्य किया, तो हम भी कर सकते हैं। तो लोग इतने आजकल मंद बुद्धि के और दुष्ट हो गए हैं कि ऐसे भगवान की नकल करने में, या नकल भी नहीं है ये वास्तव में, क्योंकि भगवान तो झूठ बोलते नहीं है, जो भी भगवान कहते हैं करते हैं वो सत्य है, वो सत्यवादी है। सत्य की परिभाषा ही यही है कि जो भगवान करते हैं कहते हैं वही सत्य है। तो फिर भी इस प्रकार से नकल करते हैं भगवान की केवल बहाना बनाने के लिए, इसे अर्ध कुकुट्टी न्याय कहते हैं। अर्ध कुकुट्टी मतलब एक मुर्गी, अर्ध मतलब आधा। एक किसान था, उसके पास मुर्गी थी और एक मुर्गी सोने का अंडा रोज देती थी, एक दिन में एक सोने का अंडा, बस उसे ज्यादा नहीं कम नहीं। तो ये किसान बहुत धनी हो गया, हर रोज एक सोने का अंडा मिल रहा, कल्पना कीजिए, बेच बेच के बहुत सारा धन मिल गया उसे। तो फिर धनी व्यक्ति या धन की कोई सीमा नहीं होती है ना, लालच की कोई सीमा नहीं है। तो व्यक्ति के पास इतना सोना आने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो सोचने लगा कि यह ठीक है, ये मुर्गी सोने का अंडा तो दे रही है, लेकिन इसे खिलाना जो पड़ रहा है मुझे, अगर ये खिलाने का खर्चा बच जाए ना तो कितना अच्छा होगा। अब देखिए एक मुर्गी कितना खाएगी, थोड़ा सा अनाज खाएगी ना, उस इतने से अनाज के लिए खर्चा कितना होगा, मामूली सा होगा, और उस मामूली से खर्चे के लिए उसे इतना सब मिल रहा है, एक सोने का अंडा मिल रहा है, तो खर्च कितना कम हो रहा है और मिल क्या कितना जा रहा है, बताइए। आप में से जो व्यापारी हैं आप अच्छी तरह से समझते हैं। देखो अगर आपको कुछ चाहिए तो खर्च किए बिना नहीं मिलेगा, कोई व्यापार करना है तो पहले कुछ खर्च करना चाहिए तब कुछ मिलेगा। तो ये व्यक्ति लालची हो गया, सोचने लगा कि खिलाना क्यों चाहिए, केवल अंडा चाहिए मुझे, खिलाने का खर्चा नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, उस मुर्गे की गर्दन को काट दिया, सोचा कि चलो केवल अंडा मुझे मिले, अंडा चाहिए, अंडा तो पीछे से आता है, सामने का खर्चे का हिस्सा है, आमदनी का हिस्सा तो पीछे का है, तो पीछे का हिस्सा रखेंगे, सामने का हिस्सा काट देंगे। तो फिर गर्दन काट दी उस मुर्गी की, तो क्या हुआ, सोने के अंडे आते रहे, बंद हो गए। तो ये अर्ध कुकुट्टी न्याय है, भगवान ने जो ऐसे जब अद्भुत काय की लीला में, भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि सदैव अपने आत्माराम स्थिति में स्थित होते हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं को की नकल ये लोग करते हैं, लेकिन दूसरे कार्य नहीं करेंगे, गोवर्धन पर्वत धारण करो, बाद में झूठ बोलो जितना चाहे तो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी को भगवान के अनंत लीलाओं की नकल करनी है तो सारी लीलाओं की नकल करनी चाहिए। इसलिए भगवान ऐसे लीलाएं भी करते हैं ताकि लोग समझ जाएं कि ठीक है, मैं मनुष्य समाज में आकर एक साधारण बच्चे की तरह लीला तो कर रहा हूं, परंतु फिर भी याद रखना मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं। इसलिए फट करके भगवान कभी ऐसे कुछ लीला कर देते हैं, किसी असुर का वध कर देते हैं, अग्नि को निगल लेते हैं, काली जैसे विषद और भयंकर नाग का दमन करते हैं। तो ये है भगवान की लीला। भगवान की लीलाओं से न केवल हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है, न केवल हमारी श्रद्धा और आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ती है, न केवल हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है लीलाओं को सुनने से पढ़ने से, साथ साथ में भगवान एक महत्वपूर्ण संदेश सब जगह देते हैं कि मैं परम सत्य हूं, और परम सत्य होते हुए भी मैं यहां आकर तुम सबके बीच में ऐसे साधारण प्रतीत होने वाली लीलाओं को कर रहा हूं। तो भगवान ने फिर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। और फिर भगवान ने क्या किया?
अथाह भगवान गोपान हेम बतात भजौ कसह यथोपजो शंभिष्यत गिरी गर्तम सगोधनाह।
अथ उसके बाद आह, आह भगवान गोपान, तो भगवान ने कहा गोपों से, जितने भी गोप गए हैं जो सब पीड़ित थे वर्षा से, तो उन्होंने कहा हे अम्ब तात व्रजौकसा, हे माता, हे पिता, हे व्रजवासी गण, यथा उपजोषम विशत गिरिगर्तम सगो गोधना, यथा जैसे जैसे आपको अनुकूल लगे, आपकी इच्छा के अनुसार आराम से आप सब इस गर्त में आइए, जो गोवर्धन पर्वत उठा के जो यहाँ स्थान हुआ है इसके अंदर, इसके नीचे आप आ जाइए, आराम से आ जाइए। यथा उपजोषम, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप आइए, विशत अंदर आइए। गिरी गर्तम, जो स्थान तैयार हुआ है इस गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाने से, और अकेले नहीं आइए, सब गोधना अपने गवों को लेकर आइए। नंद महाराज के कितने गाय थे? केवल 9 लाख। और अंदर ब्रजवासियों के भी कितने हुए होंगे? ब्रजवासियों की भी संख्या अनेक थी, वहां के वैश्य गोपगण थे, साथ साथ ब्राह्मण थे, उनके पत्नियां, उनके बच्चे, तो भगवान ने सबको निमंत्रण दिया, आओ 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 मेरे साथ। तो वैसे साधारणतः ब्रजवासी जितने थे, पशु मनुष्य सब मिलाकर, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा थी, तो एक पर्वत के नीचे ये सब कैसे आ सकते थे? कैसे संभव था? परंतु संभव हुआ। क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों के स्पर्श से इतने आनंदित हुए, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपने आप को विस्तारित कर लिया, 32 मील लंबे हो गए। और ऐसे 32 मील लंबे जगह के अंदर नीचे सारे ब्रजवासी पशु मनुष्य सब अंदर आ गए। गोवर्धन पर्वत तो भगवान से अभिन्न होने के नाते दिव्य है, अपने आप को विस्तार कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसी इच्छा है गोवर्धन की वैसे अपने आप को बड़ा छोटा वो कर सकते हैं। नहीं तो गोवर्धन पर्वत इतने सारे लोगों को अपने नीचे कैसे स्वीकार कर सकता था, कैसे आश्रय दिला सकता था? और इतना ही नहीं, गोवर्धन पर्वत को जितने भी वज्र लगे जो इंद्रदेव भेज रहे थे एक के बाद एक क्रोधित होकर, वो वज्र ऐसे लगे कि जैसे कोई फूल अर्पण कर रहा था। जिस प्रकार से जब भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को तीर मार रहे थे युद्ध भूमि में, तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि भीष्मदेव बहुत शीतल फूलों की वर्षा कर रहे हैं हमारे ऊपर। इसी प्रकार से गोवर्धन को कोई कठिनाई नहीं हुई। गोवर्धन के ऊपर जितने भी पशु थे, हिरण और अन्य पशु, वो सारे गोवर्धन के ऊपर चले गए। जो पशु नीचे नहीं आए गोवर्धन के, केवल ब्रजवासी का अपने गायों को लेकर आए, लेकिन पशु आदि वो सब गोवर्धन के ऊपर चले गए, मयूर आदि, और ऊपर चलते गए गोवर्धन के शिखर तक पहुंचे। और हालांकि इतनी वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादलों का गर्जन हो रहा था, फिर भी इन पशुओं को बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं हुई। और यहां नीचे भी सभी लोग वहां बड़े आनंद से थे। रेणु गीत में श्रीमद् भागवत के 21वें अध्याय में गोपियां एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं,
हंताय मद्रिरबलाहरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह को गणयुक्त योग्यः पानीय सूयवसकं नरकन्दमूलये। वो कहती हैं हंता हंत हंत, अरे देखो 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 तो सही, अयम अत्रिहि, इस गोवर्धन पर्वत को देखो तो इसका कितना सौभाग्य है। गोपियां आपस में बात कर रही हैं, गोवर्धन का गुणगान कर रही हैं। हंतायम अत्रि अबला, अबला मतलब हे सखी देखो ये गोवर्धन क्या है, हरिदास वर्य, कृष्ण के दासों में से सर्वश्रेष्ठ है हरिदास वर्य। हंताय मध्य रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम मतलब बलराम, राम और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से प्रमोद बहुत हर्षित बहुत आनंदित हो गए हैं ये गोवर्धन। और इनका आनंद किस तरह से प्रकट हो रहा है, देखो उनके ऊपर उनके शरीर के ऊपर जितने वृक्ष हैं वो सब जितने फूल फल हैं सब खिले हुए हैं, हरियाली भरपूर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था भी गोवर्धन, उसी प्रकार से श्री कृष्ण गोवर्धन जो है हर्षित हो गए। मानव तनों की सह गोगण युक्त योगत, और गोवर्धन जो है वो झुक के सब का सम्मान कर रहे हैं, श्री कृष्ण बलराम का साथ साथ उनके ग्वाल बालों का। पानी असूय सकंदर कंद मूलई, और भगवान श्री कृष्ण को बलराम को ग्वाल बालों को उनके गायों गौओं को वो पानी के लिए झरने दे रहे हैं जिनसे कि शीतल जल का पान कर सकें, कंद मूल आदि बहुत स्वादिष्ट भोजन वो कर सके, यहाँ पर गुफे आदि हैं जिसमें वो विश्राम कर सकें, और बहुत ही मुलायम घास है जिसके ऊपर वो कभी लेटना चाहे तो शयन भी कर सकें। इस प्रकार से गोवर्धन कृष्ण बलराम उनकी ग्वाल बाल मित्र और गौओं की सेवा कर रही है, इसलिए गोवर्धन है हरिदास वर्य। तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर जाते थे प्रतिदिन गौओं को चराने के लिए। गौओं को चराना ये तो बहाना था, साथ साथ क्रीड़ा करना चाहते थे, जैसे बच्चे स्कूल जाने के बहाने से वो जाते हैं वास्तव में खेलने के लिए, है ना, दो क्लास के बीच में थोड़ा समय मिलता है, अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए अवसर मिल जाता है, स्कूल की पढ़ाई तो करनी है लेकिन उद्देश्य क्या है, मित्रों से मिलेंगे बहुत खेलेंगे मजा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से जाते थे गोवर्धन में, गौओं को चराते थे बड़ा आनंद लेते थे। तो ये गोवर्धन की दशा थी जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, गोवर्धन पर्वत का आनंद इतना था कि गोवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भगवान ने कहा न त्रास इह वह कार्यो मत हस्ताद्रि निपातनात्, न त्रास, वो सारे ब्रजवासियों से कहने लगे क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि ब्रजवासी गण हिचकिचा रहे होंगे कि भाई कृष्ण ने धारण किया इतना बड़ा पर्वत छोटी उंगली पर और हम सब अंदर जाएंगे और फिर अगर गिर पड़ा तो क्या होगा, तो हो सकता है कि सारे ब्रजवासी गण हिचकिचा रहे थे कि भाई अंदर जाएं या नहीं जाएं। तो कहा कृष्ण ने न त्रास इह वह कार्य, कि इस कार्य में, किस कार्य में, अंदर आने के कार्य में, गोवर्धन के नीचे जो जगह है उसमें प्रवेश करने के कार्य में न त्रास, कोई भय नहीं होना चाहिए आपको। क्या भय हो सकता है आपके मन में, मदहस्त अद्रि निपतना, कि मेरे हाथों से ये अद्रि ये पर्वत गिर जाएगा, इस डर से अब चिंतित नहीं होना। वात वर्ष भय अनलम, वात वर्ष के भय से ये गोवर्धन पर्वत आपकी रक्षा करेगा। तत्राणम विहताम विवह, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुख, आपकी सुविधा के लिए सारी व्यवस्था यहाँ गोवर्धन के नीचे की हुई है। तो आइए 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 सब आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत रमणीय वातावरण और रमणीय एक स्थिति थी गोवर्धन पर्वत के नीचे। हम सोचेंगे कि अगर कोई पर्वत को उखाड़ा जाए तो उसके नीचे जमीन कैसे होगा, ऊबड़ खाबड़ जमीन होगा, है ना, कभी ऊपर पत्थर होंगे, कुछ नीचे ऊपर नीचे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस जगह को इतना सुंदर और रमणीय बनाया, हरियाली सब जगह, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं कुछ नदियां बह रही हैं, कहीं वृक्ष हैं, कहीं ये है वो है, सारी व्यवस्था भगवान ने गोवर्धन के नीचे बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं ब्रजवासियों से कहा कि देखो, सृष्टि का संहार जब होता है तो जितने भी प्राणी होते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर में भगवान नारायण के अंदर विश्राम करते हैं और वहां बिल्कुल सुप्त अवस्था में रहते हैं अगले सृष्टि तक। लेकिन वहां जो आनंद आपको नहीं मिलेगा वो यहां मिलेगा, इसलिए डरिए नहीं। ये स्थान गोवर्धन के नीचे है, सारी सुरक्षा है, यहाँ बहुत आनंद की सुविधाएं हैं, इसलिए आइए आइए आप बिल्कुल डरिए नहीं। और अगर आप सोचते हैं कि भाई ये गोवर्धन इतना भारी है, ये छोटा बच्चा कैसे धारण कर रहा होगा और ज्यादा देर धारण नहीं कर पाएगा इस पर्वत को, तो आप डरिए नहीं। देखो, ये पर्वत ने अपनी शक्ति दिखाई है पहले। जब हम सब ने गोवर्धन को इतना भोग अर्पण किया था तो गोवर्धन ने एक विशाल पर्वत धारण किया था ना? हाँ किया था। तो फिर आपको विश्वास होना चाहिए कि ये गोवर्धन समर्थ है, ये स्वतंत्र है, दिव्य शक्ति है गोवर्धन की। गोवर्धन सदैव भौतिक सृष्टि के परे हैं और इसलिए गोवर्धन अपनी ही शक्ति से उठ गए हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, ऐसा नहीं सोचना कि मैं मेरी शक्ति से धारण कर रहा हूं। ये तो गोवर्धन पर्वत अपने आप उठ गया है और बस ये मेरी उंगली पर यूं ही बस खेल रहा है। तो ऐसे डरना नहीं कि मैं 7 साल का बच्चा हूं, इतने विशाल पर्वत को मैं कैसे धारण कर सकूंगा। देखो कितना हल्का है, माता यशोदा है, देखो माता देखो कुछ है, कुछ गड़बड़ है, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सारे ब्रजवासी का देख रहे हैं भी हौसला बार जाए नहीं जाए, चाहे क्या करें, लेकिन प्रेम था श्रद्धा थी तो सभी लोग अंदर गए। और जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो उनका मन तुरंत शांत हो गया। तथा निर्विभिषुर कर्तम कृष्ण आश्वासित मानस यथा अवकाशम स धनाह स व्रजह सोपजीवनः। तो जैसे उनके मन शांत हो गए, कृष्ण आश्वासित मानस, कृष्ण के मधुर वचनों से उनका मन शांत हो गया। न केवल उस वर्षा से, उस ठंडी से, उस तूफान से, बल्कि उस संशय से भी कि भाई आगे सब सुरक्षित है ना गोवर्धन के नीचे, उससे भी उनका मन, उस संशय से उनका मन शांत हो गया। तथा निर्विभिषुर कर्तम, फिर वो उस गर्त या उस पर्वत के नीचे जो स्थान था उसके अंदर प्रवेश कर गए। और फिर यथा अवकाशम स धना स व्रजह स उपजीवनः, फिर आराम से बिल्कुल अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने अपने जगह चुन लिए। जैसे आप सब मंदिर में आते हैं अपने अपने जगह चुन लेते हैं ना बैठने के लिए, कोई आते हैं किसी को वही जगह पसंद है, किसी को कहीं पसंद है, आराम से आके अपने अपने जगह में सब बैठ जाते हैं। तो ब्रजवासी कण गए और अकेले नहीं, सधनाह, धन क्या है ब्रजवासियों का, गऊ है, तो गऊओं को साथ में लेकर आए। सव्रजाह, उनकी जो बैलगाड़ियां हैं उनको भी लेकर आए, उनका सारा संसार था ना उसमें बैलगाड़ी में, सब कुछ लेकर आए। स उपजीवन, मतलब उनके साथ में और जो भी हैं जो उनके ऊपर निर्भर थे, जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के कुटुंब हैं, परिवार हैं, वो सब वहां उनके साथ में आए। सब बड़े आराम से अलग अलग जगह में स्थित हो गए। ऐसा बढ़िया पिकनिक हो गया गोवर्धन पर्वत के नीचे, सभी लोग प्रवेश कर गए, अंदर आए। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्षुत तृत व्यथाम सुख अपेक्षाम हित्वा तैर व्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधाराद्रिम सप्ताहम नाचलत पदा। कहने लगे, क्षुत मतलब भूख, तृत तृष्णा मतलब प्यास, व्यथा मतलब दर्द, सुख मतलब अपने सुख को, अपेक्षा मतलब विचार, हित्वा त्याग दिया उन्होंने। सारे ब्रजवासियों ने अपने भूख प्यास दर्द और सुख दुख इन सब के विचारों को हित्वा त्याग दिया। तय ब्रजवासी भी, ब्रजवासियों ने ऐसे किया। क्यों ऐसे किया? वीक्षमारह दधार अद्रिम, क्योंकि वो अभी श्री कृष्ण के पास थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण को देख रहे थे। दधार अद्रिम सप्ताहम नाचलात पदार्थ, क्योंकि श्री कृष्ण वहां खड़े थे। दधार अद्री, अद्री को धारण किए हुए, सप्ताहम पूरे सप्ताह, सात दिन सात रात लगातार श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया। न चलात पदार्थ, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न अचलत पदार्थ मतलब उस स्थान से हिले नहीं श्री कृष्ण। ब्रजवासियों को और क्या चाहिए था? ब्रजवासियों की जीवन में दुख केवल एक था, वो क्या था? क्या था दुख? कृष्ण सुबह चले जाते थे गवों को लेकर और फिर आते थे शाम को, दिन भर कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता था। और जैसे ही लौट के आते तो फिर अपने घर में चले जाते और वहां पर सो जाते, और गोपियों को भी गोपों को भी जाकर अपने अपने घरों में सोना होता, तो रात को भी नहीं देख सकते, दिन के समय नहीं देख सकते, बस दिन में दो बार दर्शन ले सकते थे। लेकिन इस बार अभी भगवान श्री कृष्ण 24 घंटे सात दिन लगातार बिना हिले एक जगह में खड़े थे सब ब्रजवासियों के सामने। इसलिए यहां कहते हैं सप्ताहम न अचलत पदार्थ, पदार्थ मतलब उस स्थान से, न अचलत मतलब वो हिले नहीं। तो देखिए ब्रजवासीगण को कितना फायदा हुआ, भगवान अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई कार्य संपन्न करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत धारण करने से न केवल उन्होंने आगे चल के इंद्र का मान भंग कर दिया, न केवल हम सबको श्रवण कीर्तन का विषय दिया है जिससे कि भक्ति में आगे बढ़ सके, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय ब्रजवासी भक्तियों भक्तों को भी उनका निरंतर लगातार सात दिन दर्शन करने का सुअवसर प्रदान किया। उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए, रस का आदान प्रदान करने के लिए जब श्री कृष्ण खड़े थे वहां हसमुख चेहरे से, एक बाएं हाथ की छोटी उंगली से और दाहिना हाथ कमर पे ऐसे था, कभी कभी उस दाहिने हाथ से बांसुरी बजाते एक हाथ से, कभी कभी यूं ही रख देते, हसमुख चेहरे से भगवान इधर उधर देख रहे थे। चमत्कार ये था भगवान की योग माया शक्ति से कि हर एक ब्रजवासी ये सोच रहा था, ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण मेरे सामने हैं, मुझे देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण उस पर्वत के बीच में हैं और ब्रजवासीगण सब घिरे हुए हैं, घेर के बैठे हैं या खड़े हैं श्री कृष्ण को, फिर भी हर एक व्यक्ति हर एक भक्त को लगा कि श्री कृष्ण मुझे देख रहे हैं। भगवान की माया, योग माया इस प्रकार से भगवान के भक्तों के प्रेम को बढ़ाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे खड़े रहे तो ब्रजवासियों के लिए एक उत्सव था, दावत था, और इस समय का वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उनको भूख प्यास आदि क्यों नहीं लगी? क्योंकि पूरी तरह से उनका तन मन उनका सारा चित्त जो है श्री कृष्ण में समाया हुआ था। श्री कृष्ण का सुंदर दर्शन बस कर रहे थे, इससे उनका हृदय पूरी तरह से तृप्त हो गया। कोई और नहीं आवश्यकता थी उनके मन में कि कुछ अभी भोजन का समय हो गया, सोने का समय हो गया, बस केवल श्री कृष्ण का दर्शन करते रहे और श्री कृष्ण भी उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते रहे। उनकी दृष्टिपात इधर उधर जब होती थी भक्तों को देखते थे तो भक्तों को इस प्रकार का पोषण मिल जाता था जिससे कि उनके सारे दुख वगैरह सब भूल जाते। उसी प्रकार से हम जब मंदिर में आते हैं हम भी भगवान का दर्शन करने आते हैं, साथ साथ भगवान की दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ने के लिए आते हैं। भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तो आध्यात्मिक पोषण हो जाएगा, आध्यात्मिक बल मिल जाता है, क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह में, भगवान की श्री मूर्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार से ब्रजवासियों को लाभ हुआ भगवान का दर्शन वहां गोवर्धन के नीचे देखकर, यहां पर हमें भी राधा गोकुल आनंद का दर्शन करके लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमें वो श्रद्धा होनी चाहिए कि ये केवल प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात वही गोवर्धनधारी है, वही गिरिधारी है जो यहाँ विराजमान है, बेलगाम में प्रकट हुए हैं हम सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए। तो इससे इस आध्यात्मिक पोषण, इस आनंद से ब्रजवासियों को शारीरिक आवश्यकताओं की परवाह बिल्कुल नहीं थी, सोच विचार भी नहीं था इसका। इसका मतलब है कि भक्ति ये आध्यात्मिक स्तर में कार्य होता है, शरीर के ऊपर, शरीर के परे हम चले जाते हैं। वहां पर लगातार जब वो खड़े रहे, माता यशोदा चिंतित हो गए कि अरे देखो श्री कृष्ण ऐसे ही खड़ा है। बार बार जाकर श्री कृष्ण से कहती कि अरे बेटा देखो तो, तुम तो बड़े नटखट हो, स्वतंत्र मन के हो, कभी माता पिता की बात मानते नहीं हो। देखो अच्छा खासा इंद्र का यज्ञ कर रहे थे, अब वो रुकवा के तुमने ये करा दिया, अब देखो क्या हो गया, इंद्रदेव ने ऐसे किया, अब ये विशाल पर्वत धारण करके बैठे हो, तुम थक नहीं जाओगे? कभी कभी माता रोहिणी और माता यशोदा आके कृष्ण को मक्खन आदि खिलाती थे, आके उनको खिलाते थे, कृष्ण भगवान बड़े हंसमुख चेहरे से रहते थे। जब वो बांसुरी बजाते थे थोड़े बाल बाल उनसे बोलते, अरे ज्यादा बजाना नहीं, ज्यादा बजाना नहीं, अभी ध्यान रखना हो जाता और अगर क्या होगा, और ज्यादा बांसुरी बजाओगे तो गोवर्धन पर्वत को इतना आनंद आएगा, गोवर्धन पर्वत नाचने लगेगा, या गोवर्धन पर्वत पिघल जाएगा तो क्या होगा? वहां तो बाहर वर्षा हो रही है लेकिन यहाँ गोवर्धन पर्वत पिघल गया तो इस वर्षा से हम बच नहीं सकेंगे। तो माता यशोदा ऐसे चिंतित थी। मधुमंगल जो कृष्ण भगवान के ब्राह्मण मित्र हैं, जो हमेशा हंसी मजाक करते हैं और सच्चे ब्राह्मण हैं तो भोजन प्रिय हैं, विशेष करके लड्डू खाना बहुत पसंद करते हैं मधुमंगल, और कृष्ण के पास आए, अरे कृष्ण देखो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ब्रह्म तेज में क्या शक्ति है तुम मालूम है? देखो तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहे हो, लेकिन आगे तुम थक गए होगे ना? कोई बात नहीं, अभी मैं, मेरे लिए जो छड़ी है इसमें ब्रह्म तेज को, इस छड़ी के ब्रह्म तेज से मैं अभी इस पर्वत को धारण करूंगा, तो थोड़ी देर के लिए आराम करो, अब मैं पकड़ लूंगा। फिर माता यशोदा जब आई कृष्ण के पास बड़ी चिंतित अवस्था में, कृष्ण ने कहा कि नहीं माता कुछ डरना नहीं, देखो गोवर्धन पर्वत कितना हल्का है, अपनी इच्छा से है खड़ा है यहाँ पर मेरी उंगली के ऊपर, कुछ नहीं हो रहा है। तो माता यशोदा ने कहा कि अगर गोवर्धन अपनी इच्छा से है तो इधर उधर उड़ के क्यों नहीं जा रहा है, केवल तुम्हारी उंगली पर क्यों खड़ा है? इसका मतलब है कि तुमने ही धारण किया है इसको, तो थक गए होगे तुम। तो फिर ऐसे बातचीत जब माँ बेटे के बीच में चल रही थी तो मधुमंगल वहां आए, अरे माता मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ब्राह्मण ब्रह्म शक्ति को, मेरे ब्रह्म तेज को आप नहीं जानते हो, मैंने मंत्रों का उच्चारण किया है और इसलिए तो गोवर्धन ऊपर है, तो माता ईश्वर को थोड़ा गुस्सा आया, अरे चुप बैठो तुम, यहाँ मेरा बच्चा इतना बड़ा पर्वत धारण करके अभी थका हुआ है, ये कोई मजाक का समय है? तो नंद महाराज बीच में आए, अरे क्यों डांटती हो मधुमंगल को, वो तो कृष्ण का इतना प्रिय है, कुछ नहीं होगा रहने दो। तो इस प्रकार से बातचीत थोड़ी बहुत चल रही थी। उधर भक्ति सामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के हम उम्र जो गोपगण थे जिनको वयस्य कहते हैं, वयस्य मतलब जो वय के उसी आयु के हैं समान प्राय, तो वो सब वहां पर आए और कृष्ण से कहने लगे कि अरे कृष्ण तुमने बहुत अद्भुत कार्य किया, तुम्हें गोवर्धन पर्वत धारण कर रहे हो लेकिन काफी समय से कर रहे हो, थके हुए होगे, कहीं अगर ज्यादा थक गए हो तो देखो ऐसा करो कि ये पर्वत अभी सुबल को दे दो, सुबल संभाल लेगा, अरे सुबल आ जाओ इधर, सुबल तुम पकड़ लो पर्वत को, और अगर सुबल को देने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें लगता है कि सुबल नहीं उठा पाएगा, तो कम से कम अपने हाथ तो बदल लो, बाएं हाथ से दाहिने हाथ में कर लो और फिर बाएं हाथ को हम मालिश कर लेते हैं ताकि कहीं तुम ज्यादा थकावट न हो जाए। तो इस प्रकार से वृंदावन में गोवर्धन के नीचे ही सब चल रहा था। ग्वाल बाल जो वयस्क हैं वो भी इस प्रकार से कार्य करने लगे। आगे भगवान के सौंदर्य को देखते रह गए सारे ब्रजवासी गण। भगवान ने अपने इच्छा शक्ति से सारे परिसर को सूखा बना दिया, कहीं भी किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र भी गोवर्धन के गोल गोल घूमता रहा और अपनी उष्णता से सारे पानी को सुखाता गया, तो न नीचे न ऊपर किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई, बड़े आराम से यहां सारे ब्रजवासी गण रहने लगे। हालांकि भगवान ने 7 दिन और 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठाया लेकिन ब्रजवासियों को लगा कि केवल एक घटिका बीत चुका है, घटिका मतलब 24 मिनट, केवल 24 मिनट बीत चुके हैं, मतलब बहुत कम समय बीता है। जब कोई दुख का समय होता है तो समय बढ़ जाता है, एक क्षण 1 साल के समान लगता है, जब आनंद का समय होता है तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है, 1 साल का समय 1 क्षण के समान बीत जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है, युगायितम निमेशेन चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे, हे प्रभु हे गोविंद आपके विरह में एक क्षण भी युग के समान प्रतीत होता है। युग के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कलयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, सत्ययुग आदि, परंतु इस संदर्भ में युग 12 वर्ष का होता है, 12 वर्ष की अवधि को भी युग कहते हैं। तो निमेश जो एक क्षण के बराबर, क्षण से भी कम की समय की अवधि है, एक क्षण का समय भी 12 वर्षों के समान प्रतीत हो रहा है आपके विरह में। चक्षु से हमारे आंखों से अश्रु धारा बह रही है और साथ साथ में हमें बहुत कष्ट हो रहा है। चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायतम जगत सर्वम, सारी दुनिया जो है शून्य दिख पड़ रही है। तो ये एक वातावरण ऐसे भक्ति के समय जब विरह की भावना में होता है, तो गजवासियों ने भी ऐसी ही एक प्रार्थना की थी भगवान से गोपी गीत में, जब गोपियां कहती हैं, अटतीय भवान अनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते उपनिषद कहती है कि अटत यद भवान, जब आप जाते हैं, अटति मतलब आप घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, अहनि दिन के समय काननम वन में, तो उस समय क्या होता है? अटति यद भवान अहनि काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। जब हम आपको देख नहीं सकते हैं, त्वाम अपश्यताम, तो एक त्रुटि मतलब एक क्षण का समय भी एक युग के समान प्रतीत होता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, कुटिल कुंतलम मतलब आपकी अलखाएं, आपके बाल, काले बाल जो है, जो इस प्रकार से कपोल पे आते हैं, ये गाल पे आते हैं, तो ऐसे बालों से सुशोभित आपका सुंदर मुख का हम स्मरण करते हैं, और फिर जो सृष्टि करता है उसको कोसते हैं। जड़ उदीक्षता, ये जड़ व्यक्ति है, बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि इसने ऐसे पलके हमको दे दी हैं जिससे कि हमारे आपके श्री कृष्ण के दर्शन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आंखों का उद्देश्य है श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करना, लेकिन जब ये पलके आ जाती हैं, पलके बार बार बंद होती रहती हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है निरंतर दर्शन करना भगवान के सुंदर रूप का। इसलिए जो सृष्टि करता है उसने बिना सोच विचार किए ये शरीर की रचना, ये सृष्टि की रचना की है। जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि ब्रजवासियों के लिए भगवान का दर्शन ही उत्सव हुआ करता था। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजक कपोल सुभग सविलास हासन, नित्योत्सवम न तत्रपुर दृशभिः पिबन्त्यो नायो नराश्च मुदिता कुजुतानि निश्च। इसी प्रकार का भाव यहाँ भी ब्रजवासीगण व्यक्त कर रहे हैं। क्या भाव? यस्य आननम, जिनके आनन मतलब जिनके मुखार बंद में, यस्य आननम मकर कुंडल चारु कर्ण, जिनका मुख बहुत सुंदर है और जिसके कान, जिनके कान भी बहुत सुंदर है, और उनमें चारु कर्ण सुंदर कर्णों में मकर कुंडल है, भ्राजक कपोल उनके जो गाल है वो चमक रहे हैं, सुभग उनका जो शरीर है बहुत कोमल है, नाजुक है, सविलास हासन हल्की मुस्कान उनके चेहरे पे है। तो ये दृश्य नित्योत्सवम न तत्र दृश्य भी पिबंध्यो नारियों नरा है, तो जब नर और नारी गोप गोपियां आदि भगवान के इस सुंदर रूप का दर्शन करती हैं, दृश्य भी पिबंध्यो अपने नेत्रों से इस सुंदर रूप का पान करती हैं, नित्योत्सवम ये एक नित्य प्रतिदिन का उत्सव होता है, हर क्षण का उत्सव, और इससे ब्रजवासी कभी थकते नहीं है, न तत्रिपो कभी संतुष्ट नहीं होते। नार्यो नराश्च मुदिता, ऐसे मुदित अवस्था में रहते, आनंदित अवस्था में रहते, और कुपिता निमेश, कुपित हो जाते, क्रोधित हो जाते सृष्टिकर्ता के ऊपर कि आपने ऐसे आंखें क्यों बनाई हैं। तो भगवान का सौंदर्य ही सब कुछ है वास्तव में। अगर कोई व्यक्ति भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग संसार के सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, और ये संसार का सौंदर्य ही सबको बांध के रखता है जन्म मृत्यु के चक्कर में। परंतु जब कोई व्यक्ति भगवान के सौंदर्य से आकर्षित हो जाता है, उस इस दुनिया के सौंदर्य को, संसार के सौंदर्य को तुच्छ समझता है, जैसे रास्ते में पड़े हुए तृण को आदमी तुच्छ समझता है, तो इस संसार के सौंदर्य को भी व्यक्ति, ऐसा जो शुद्ध भक्त है, वो तुच्छ समझता है। श्री प्रभुपाद जी एक कहानी बताया करते थे हमें समझाने के लिए कि इस संसार के सौंदर्य का क्या मूल्य है, इसका क्या अर्थ है, और क्यों हम खामखा ऐसे झूठे सौंदर्य के पीछे जाते हैं और असली सौंदर्य को त्यागते हैं। एक राजकुमार था, वो जब शिकार पे गया था अपने घोड़े के ऊपर बैठकर, तो जंगल में उसने देखा कि एक आश्रम है और वहां पर एक साधवी है, तरुणी है और बहुत सुंदर है। तो उसे लगा कि ये साधु साधवी है लेकिन बहुत सुंदर है, तो आकर्षित हो गए। तो वहां जाकर उसने कहा कि मैं राजकुमार हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। ये तो साधवी थी, विवाह करने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा कि ये तो राजकुमार है, ये तो गुस्सा होकर कुछ कर भी सकता है, इस राजकुमार को कुछ सिखाना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। तो थोड़े बहुत सोचकर उस साधवी ने कहा कि एक हफ्ते बाद आप आइए। तो राजकुमार बड़ा खुश हो गया कि चलो एक हफ्ते के बाद मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो उस एक हफ्ते के दौरान इस साधवी ने क्या किया, उपवास किया। उपवास करके ऐसे जड़ी बूटी ले ली जिनसे कि उनको बहुत उल्टी हुई, और ये सब जो है शरीर से जितने भी सारी चीजें आती हैं बाहर, उन सबको उन्होंने बड़े से मटके में रख लिया और एक हफ्ते तक ऐसे करती गई। और फिर एक हफ्ते के बाद उनकी दशा तो उनका सौंदर्य तो पूरा खत्म हो गया था, कि तरह तरह की चीजें लेकर उल्टी कर करके सब सारी चीजें यहां अंदर रखे थे, तो रूप पूरा बदल गया था। तो एक हफ्ते के बाद राजकुमार आया, ढूंढते ढूंढते उसी आश्रम में फिर उसी साधवी से मिला, लेकिन पहचान नहीं पाया क्योंकि रूप बदल गया था। और पूछने लगा कि वो स्त्री कहाँ है जिससे मैंने बात की थी एक हफ्ता पहले। हाँ मैं ही हूँ। आप हो? नहीं नहीं नहीं, आप तो नहीं, वो तो बहुत सुंदर थी वो स्त्री जिनसे मैंने बात की थी। नहीं मैं ही हूँ। अच्छा तो कहाँ गया तुम्हारा सौंदर्य? मेरा सौंदर्य देखना चाहते हो? जा उस मटके में देखो। तो व्यक्ति वहां गया, उसने मटका खोला और फिर उसकी क्या दशा हुई, तो फिर उस महिला ने उसे बताया कि देखो एक हफ्ते पहले तुमने देखा कि मैं बहुत सुंदर हूं और अब कहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक हफ्ते में अंतर क्या हुआ? बस यही अंतर हुआ। इसका क्या मतलब है कि यही सौंदर्य है दुनिया का, ऐसे सौंदर्य के पीछे तुम भागते हो? थोड़ा सोचो कि ये संसार का सौंदर्य क्या है। ये जो शरीर है ये नश्वर है, सब गंदे पदार्थों से भरा हुआ है। रुक्मिणी देवी भी श्रीमद् भागवत में कहती है कि ये शरीर क्या है, केवल एक ऐसे चमड़ा है जिसमें तरह तरह के गंदे वस्तुएं पड़े हुए हैं। ये शरीर है, ये शरीर की पहचान है, रुक्मिणी देवी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में कहती है। तो इस झूठे सौंदर्य के पीछे क्यों सारी दुनिया घूम रही है? ये दुनिया ही मिथ्या के ऊपर आधारित है, और मिथ्या पे आधारित होकर कोई सुख कोई शांति संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से आकृष्ट होता है वो इस झूठे सौंदर्य के पीछे नहीं जाता है। रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को भी ऐसे ही सिखलाया था, जो कि स्त्री से इतना आकर्षित था, उसके पीछे पीछे छतरी लेकर जाता था और सभी लोग सड़क पे मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो व्यक्ति अंधा हो गया था इस दृष्टि से कि संसार क्या कह रहा है उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो स्त्री के आकर्षण में पागल सा हो गया था, तो जाके छतरी लेकर इधर उधर उसकी सेवा करता था। तो रामानुज ने शिष्यों से पूछा जब वो समुद्र में स्नान करने आए थे कि ये कौन है यार? कहा ये फलाना फलाना आदमी है। अच्छा इसे मेरे पास ले तो आओ। तो रामानुज के पास जब वो आए तो रामानुज ने कहा कि क्यों ऐसे करते हो? सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, सबके सामने ऐसे छतरी लेकर पीछे 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 जाते हो उस महिला के, वो तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, क्यों ऐसे करते हो? वो क्या करो, बहुत सुंदर है। सौंदर्य है तो क्या है, किस प्रकार का सौंदर्य है? मैं तुम्हें ऐसे सौंदर्य को दिखलाऊंगा जिससे कि तुम इस संसार का सौंदर्य भूल जाओगे। हो ही नहीं सकता। ऐसा सौंदर्य कैसे हो सकता है, नहीं होगा, आओ मेरे पास आओ। फिर रामानुज ले गए, कहाँ ले गए, श्री रंगम रंगनाथ जी के सामने, रंगनाथ जी की मूर्ति है, आरती का समय था, तो उनको ले आओ मेरे साथ। और पुजारी आरती की दीप जो है वो दिखा रहे थे भगवान के मुखारविंद को, आओ देखो देखो इस सुंदर आंखों को देखो, है इससे सुंदर कोई वस्तु और जगत में, उस झूठे सौंदर्य में और इस सौंदर्य में, असली सौंदर्य में अंतर समझ में आया। तो रामानुजाचार्य जैसे शुद्ध भक्त और आचार्य की कृपा से उसकी बुद्धि बदल गई और फिर उस स्त्री से विवाह करके दोनों अच्छे गृहस्थ भक्त बन गए। रामानुजाचार्य के बहुत ही बढ़िया सेवक बन गए, दोनों ने एक आदर्श उदाहरण रखा कि गृहस्थ भक्तों को कैसे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम सबको भगवान के प्रति आकर्षित होने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के सौंदर्य के बारे में सुनना चाहिए, उनके दिव्य गुणों के बारे में सुनना चाहिए, जिससे कि ये संसार के प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण है, वो सब खत्म हो जाएगी। जब श्री कृष्ण बलराम कंस के बुलाने पर मथुरा में आए थे और मल्लयुद्ध होने वाला था, तो उस रंग में सारे जो मथुरा के निवासी एकत्र हुए थे वो सब आपस में बात कर रहे थे कृष्ण बलराम के सुंदर रूप को देखकर, विशेष करके कृष्ण का रूप देखकर, और ये वृंदावन के निवासी कितने भाग्यशाली हैं इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। गोप्यस्तपः किम् अचरम् यदमुष्य रूपम् लावण्य सारमसमोध्वमनन्य सिद्धम् दृग्भिर्विभङ्क्त्यनुसाभिनवम् दुरातम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। वो कहते हैं आपस में, गोप्यः तपः किम् अचरम्, गोपियों ने किस प्रकार की तपस्या की होगी, यद अमुष्य रूपम, कि उन्होंने अमुष्य मतलब कृष्ण के सुंदर रूप का वो दर्शन कर रहे हैं, हमेशा कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो ऐसे सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन से किस प्रकार की तपस्या की होंगे पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी। ये श्री कृष्ण इनका रूप कैसा है, लावण्य सारम, लावण्य मतलब सौंदर्य, सार मतलब सार, श्री कृष्ण का रूप सारे समस्त ब्रह्मांड के सौंदर्य का सार है। असमोधम असमपूर्धम, ऐसे रूप के समान कोई नहीं है, कोई बढ़कर नहीं है। अनन्य सिद्धम, ऐसे रूप को किसी अन्य आभूषण आदि से सुशोभित नहीं किया जा सकता। हालांकि श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर आभूषण अनेक हैं, परंतु इनसे होता क्या है कि आभूषणों का सौंदर्य बढ़ जाता है। कृष्ण का सौंदर्य क्या बढ़ेगा, कृष्ण तो आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, कृष्ण को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दृग्भिः पिबन्तिः, वो अपने आंखों से पी रहे हैं। अनुसर अभिनवम दुरापम, अभिनव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो है हमेशा ताजा रहता है। संसार में हम किसी चीज को देखते हैं, बार बार देखते हैं तो हिसाब किताब से लग जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वो अमृत के समान है। उनका रूप इतना मधुर है कि इसका पान करते रहने से भी व्यक्ति थक नहीं जाता। न पितृ तत्पुरुष दृष्टि एकांत धाम यशसह श्रीय ऐश्वरस्य, और ये जो भगवान का सुंदर रूप है ये एक धाम है, एकांत धाम है यश का, ऐश्वर्य का और सौंदर्य का। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन लगातार 24 घंटे 7 दिन ब्रजवासी गण कर रहे थे, तो ये लाभ इन सबको मिला। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति की वजह से हालांकि इंद्रदेव इतना वर्षा बरसा रहे थे फिर भी मथुरा में ब्रज भूमि में कहीं भी बाढ़ हुआ नहीं। इसके बाद सारा बाढ़ खत्म हो गया और इस प्रकार से भगवान ने ये सुंदर लीला कर ली अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमने कहा कि ब्रजवासियों के लिए एक घटिका के समान प्रतीत हुआ, भगवान ने रात लीला की, ब्रह्मा जी की एक रात्रि लग गई परंतु गोपियों को लगा केवल एक रात बीत चुकी है। तो उसी प्रकार से यहाँ हालांकि सात रात बीत चुके थे, सात दिन बीत चुके थे, ब्रजवासियों को लगा कि केवल 24 मिनट बीत चुके हैं। श्री गिरिधारी भगवान की जय, गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो अभी भजन भी गाना था तो दर्शन करते करते भजन गाए, प्रार्थना है कि जल्दी से पाती है। कृष्ण देव भवंतम मंदिर ने लाइट चालू रखिए क्योंकि भजन पढ़ने में नहीं हो पाएगा, कम है इसलिए केवल तीन चार भक्तों में एक कागज रखिए, जल्दी जल्दी से एक लेकर आगे बांटिए। कृपया यहाँ पीछे के भक्तों के लिए थोड़ा दे दीजिए, सब साथ में मत रखिए, तीन चार भक्तों के लिए एक।
पांच मिनट के कीर्तन कर।